نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاطم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان جو ہے مجمع خواہشات ہے پوری زندگی خواہشات سے اس کی پور ہے اور خواہشیں بھی ایسی کہ جس کی کوئی حد نہیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی انسان کی سارا دن انسان پلاننگ کرتا ہے اپنی خواہشات کی حتیٰ کہ جب تھک کے واپس اپنے بسترے پہ جاتا ہے تو سوتے سوتے بھی اس کو خواہش آتی رہتی ہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کی خواہش مچلتی رہتی ہے تعجب کی یہ بات ہے کہ خواہشات ہیں اور دیکھنے میں کبھی نہیں آتا کہ ہر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میری ہر خواہش زندگی کی پوری ہو گئی ہے مجھے تو کوئی نہیں ملا آج تک ایسا کوئی آدمی وجہ اس کی کیا ہے کہ خواہش رکتی نہیں ہے پانی کی طرح اس نے کہا جی میری یہ خواہش ہے مجھے یہ مل جائے وہ مل گئی چیز تو اس سٹیج پہ جانے کے بعد پھر کہتا ہے یار یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے ادھر سے نکلا پھر یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی چیز ہے گویا کہ رکنے کا نام ہی نہیں دیتی خواہش انسان کی بڑھتی رہتی ہے خواہش پوری کیسے ہو اور یہ نہیں خواہشات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں اسی کی وجہ بھی انہیں خواہشات پہ انسان کو مدارج ملیں گے اور جنتیں ملیں گی انسان کو یہ بھی ہے ایک ٹیسٹ ہے خواہشات بھی کیسے اگر انسان انہیں خواہشات کو حدود شریعہ میں پورا کر دے تو اللہ کا انعام بن جاتا ہے کوئی خواہش پیدا ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں اس کی حدود کے مطابق اس کو پورا کر دے تو الحمدللہ اس کا کام بن جاتا ہے لیکن جب بڑھتی ہے خواہش تو حدود کو تجاوز کر جاتا ہے اس سے نکل جاتا ہے تب معاملہ خراب ہوتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی پوری بات یا ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ بات اصل یہ ہے کہ تھوڑا صبر کر تو اپنی من مانی زندگی گزارے گا جیسا تو چاہے گا ویسی زندگی میں تجھے ملے گا فہوا فی عشت و راضیہ اللہ پاک کہتے ہیں ہے نا قرآن میں کہ تجھے زندگی ملے گی تو بالکل تیری خواہش کے مطابق ہوگی جیسے تو چاہے گا ویسے ملے گا لیکن شرط یہ ہے اس دنیا میں جہاں میں تجھے بھیجا ہے یہاں تم میری خواہش کے مطابق زندگی گزار لے وہاں میں تجھے تیری خواہش کے مطابق زندگی دے دوں گا کیا क्या कहते हैं सोचा फॉर्म फॉर्म अल्लाह ताला कहता है कि भाई तू मेरे यहां मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार, कैसे कि जो कुछ मैं कहूं वैसे करता रहे, जो मैं तुझे जिस हालत में जो रखूं उस हालत को कबूल करता रहे, जैसे मैं जितना मैं रिज्क दूं उसको कबूल करता रहे, जो मैं तुझे मामलात करूं मामला पूरा करता रहे। कहने अल्लाह तेरी मर्जी है, जिस तरह तू रख तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदा रहूंगा। अगर यहां तुमने अपनी ख्वाहिश को पाने की कोशिश की तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं फिर नुकसान तुझे कितना होगा। यहां तो मिलनी नहीं ख्वाहिश, वो तो मिलनी नहीं, लेकिन उस ख्वाहिश की जद्दोजहद में कोशिश में तू ये करेगा तो उस जिंदगी को जाया कर देगा जो तेरी जिंदगी हमने रखी है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजार देना। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के छोटा सा ये पैगाम समझ ले कि भाई ये जिंदगी तो आर्जी है इंसान के पास, और ये जिंदगी हम गुजार ही नहीं सकते अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो ही नहीं सकती, चाहे कितना हम उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कितना भी दूर चले जाएं, कितने गलत काम कर लें, कितने बुरे कामों में चले जाएं, हर किस्म से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहें, अल्लाह ताला का तो हो नहीं सकता। गलती ये होती है कि इसी ख्वाहिश को पूरा करने में एक इंसान गलत रास्ते अख्तियार करता है, मिलना फिर भी नहीं होता, और दूसरी ये कि जो असल मकसद है हमारी जिंदगी का, उस जिंदगी को पाना जिस जिंदगी को हमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारना है। क्या खूबसूरत जिंदगी होगी इंसान अगर यहां अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजार ले, तो वहां कैसी अजीब जिंदगी होगी इंसान की। सुभान अल्लाह, वहां यह है कि फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे रुकावट हो, किसी ख्वाहिश का भी किसी चीज की रुकावट नहीं होगी इसमें, जो चाहेंगे मिलेगा, जैसा चाहेंगे मिलेगा, जिस वक्त चाहेंगे वो चीज आपको मिलेगी, जो तलब करेंगे फौरन हाजिर हो जाएगी। एक शख्स है नबी पाक से कहेंगे या रसूल सल्लम कि वहां खाने वाने सब मिलेंगे, आपसे सुन जवाब दिया एक कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हर जन्नती को अल्लाह पाक खाने की बात करता है, हर ख्वाहिश पर पूरी करने के लिए 100 आदमी की ताकत अता फरमाएंगे, खाने के लिए भी जमा के लिए भी शहवात के लिए भी हर चीज के लिए उसको जो है 100 आदमी की ताकत वहां होगी, उसके मुताबिक वो खाएगा। तो फिर उसने कहा अगर इतना खाएंगे तो फिर उसने अपने जहन सोचा कि भी हाजत कहाँ पूरी करेगा अपनी, वहां कसा हाजत कैसे पूरी करेगा, वहां भी लेटरिन होंगे टॉयलेट्स होंगे वीसी होंगे, अपनी सोचते हैं दुनिया के मुताबिक सोचते ना, इतना खाने के बाद फिर क्या होगा। अल्लाह के नबी समझ फरमाया कि भाई इस दुनिया से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, वहां तो क्या होगा कि जब तुम खूब खा लोगे इस ताकत मुताबिक भी, और फिर क्या होगा कि अल्लाह सुबहान तआला तुम्हारे एक जिस्म से हल्का सा पसीना निकालेगा, वो पसीना भी ऐसा होगा कि मुश्क से बड़ी खुशबू होगी उसकी, और जैसे वो पसीना निकलेगा खुशबू के साथ पसीना जिस्म से, उसी वक्त फिर हल्के हो जाओगे, फिर खाना होगा मैं खाना तो अजीब वाक्यात हैं जन्नत के। आप कुरान को ठग देखें, सूरह वाकया देखें, सूरह रहमान देखें, और सारी सूरतों में अल्लाह पाक ने किस्से बयान किए हैं कैसे खूबसूरत, ये सारे इनाम जो लिखे हैं। फमन सकुलत मवाजीन हो फहुआ फे इश्तर रातिया, अपने मन की जिंदगी तुम्हें मिलेगी, अपनी पसंद की जिंदगी तुम वहां गुजारोगे, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जैसे चाहोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन शर्त बस एक ही है, यहां अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार ले। कितनी सारी जिंदगी हमने अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी है ना, क्या मिला, कितनी ख्वाहिशात पूरी हो गई, कुछ भी नहीं। तभी हमसे ख्वाहिश पूछो, अभी हम हजारों ख्वाहिश होंगे जब बिस्तर पे लेटते होंगे, यार ये ना हो तो ऐसे हो जाए, इसके तो ऐसे हो जाए, जब ये ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, जब मेरा ये काम चलेगा तो मैं ये कर लूंगा, फला होगा तो फला कर लूंगा, मेरे ख्याल ही पड़ाव पकते रहता है, ना वो होना ना कुछ होना, उपडाओं में क्या होता है वक्त जाया कर रहा है। इस जिंदगी को पाने के लिए देखें आप अल्लाह ताला ने कैसी पहली चीज बताई है कि कि वहां अपनी मन की जिंदगी पाना चाहते हो तो उसका तरीका बताया अल्लाह पाक ने इसी आयत के अंदर, फम मन सकुलत मवाजीन हो। हम उस जिंदगी को कैसे पा सकते हैं, कैसे कि वो जिंदगी हमें मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी कोशिश कैसे करें, मतलब इन अदर वर्ड क्वेश्चन है कि अब हमें पता चलना चाहिए कि हम तो उस जिंदगी को चाहते हैं, वो जिंदगी हम मिले जाए हम मरें अल्हम्दुलिल्लाह, मरना तो है, तो क्या मिले हमें, वो जिंदगी मिल जाए दायमी जिंदगी जहां हम अपनी मर्जी चलाएं, ना वह दिन होगा ना वह रात होगी, ना सुबह होगी ना शाम होगी, तो किसने पूछा कि डिनर किस तरह आएंगे, फरमा आएंगे उसी औकात पे, तो अल्लाह ताला उस औकात पे तुम्हें भूख लगा देगा और तुम्हें खाने मिलने शुरू हो जाएंगे। आदि जो हम यहाँ के हैं कि सुबह शाम वहां पर होगी, हमें कैसे पता है सुबह शाम हो, तो सुबह भी नहीं होगी शाम भी नहीं होगी, हाँ एक चीज होगी क्या कि सुबह के हल्का सा इशारा होगा दिन का, वो कैसे होगा, कहते कि नूर होगा, या अल्लाह कैसे नूर किस किस्म का होगा हमें पता चले, कहते वो नूर ऐसा होगा कि जैसे जब सुबह निकलती है ना, सुबह जब सूरज निकलता है ना, इशराक समझते हैं ना सुबह, ये पढ़ने वालों को खुशखबरी कि जो इशराक का जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है कुछ देर पहले, वो जो नूर आसमान पे फैला होता है ना, फरमा इस किस्म का नूर जन्नत के मुताबिक फैलेगा इशराक, कि जो सो रहे होंगे इशराक के टाइम पे उनको क्या नजर आएगा वो नूर। देखें कहता ना है थोड़ी देर बैठ जाए अल्लाह के जिक्र के अंदर, ये बातें नहीं समझ आती हमें कैसे कैसे देखें। अब ये सारी जिंदगी हम ना कभी देखी नहीं इशराक होती क्या है, हमें पता ही नहीं, इस पर आप इस तरह के नींद नहीं पूरी होती, नींद नहीं पूरी होती, यही है ना, कितना जाया कर रहे हैं आदमी, सोचे फजर पढ़े, फजर पढ़ने के बाद उसके बाद आप इशराक को बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जन्नत की बापतारी है, ये जन्नत ही यही अल्लाह ताला को यही जन्नत के मजे दिखा रहा है। इशराक के टाइम पे जब सूरज निकल जाए जाके देखें कितनी ताजगी होती है अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त, अब देखें और उस वक्त अल्लाह के जिक्र से आप लोगों के चेहरे नूर की तरह चमक होते हैं, फरिश्ते देखते हैं, तो ये नूर असल आएगा फिर वहां पर, ये नूर असल बनकर आएगा। कैसी बशारतें उन लोगों के लिए हल्की सी मेहनत, मेहनत तो कुछ नहीं एक आदत है, ये सारी फितरत पे हमारे उस टाइम पे सोना गैर फितरत है, अननेचुरल है, अल्लाह सुभान ताला के मुताबिक जिंदगी में जो काम करना है वो क्या, वो नेचुरल है, क्योंकि हम नफ्स के अंदर जकड़े हुए तो हमें अननेचुरल नजर आता है, और जो अननेचुरल और नेचुरल नजर आता है उस वक्त सोने में बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या कहा गया उस वक्त तो वही सोते हैं जो बीमार लोग हैं, सेहतमंद लोग नहीं सोते, उन औकात में नहीं सोते जिसमें अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि इस वक्त तो मेरा जिक्र हो, हम भागते हैं बिस्तरों की तरफ बिला वजह, थोड़ी सी काम पे, हालांकि हम कर सकते हैं कि भाई हम काम भी कर सकते हैं अगर उस वक्त थोड़ा बैठ जाएं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद जाके हम काम शुरू कर दें, अच्छा जब काम कर रहे होते हैं नहीं जी जब फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह बस थोड़े दिन रह गए फिर रिटायर हो जाएंगे फिर करेंगे, रिटायर होने के बाद तो कोई नजर ही नहीं आता फिर, और पहले तो काम को नजर ही आता है वो तो फिर इतना आदमी ढीला हो जाता है जब कोई काम नहीं ना, दुकान रही ना मकान कुछ भी करना, बस फिर तो बिस्तरे पड़ा है उसके पास, फिर बकवास फजूलियात जितनी चाह से करा लो और आखिर दुनिया के निकल जाता है। यार कुछ बात है, कोई एसेंस की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं, सोचिए जाना गए वहां होगा क्या, तो उसका एक तरीका बताया अल्लाह ताला ने कितना कुछ तरीका बताया, उस जिंदगी को पाने के लिए दायमी जिंदगी है, वैसे तो ना कोई चीज मिल जाती, यहां नहीं मिलती तो वहां कैसे मिल जाएगी हम कुछ, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कानून बताए कुछ चीज है, फम मन सकुलत मवाजीन, फरमाया उस जिंदगी को पाने के लिए एक काम है, वो क्या चीज है, अमल, अमाल जिसको हम कहते हैं अमाल, लेकिन अमाल जिससे भी तरीका बताया कौन से अमाल जिससे हम उस दुनिया उस जिंदगी को पाएंगे, अमाल तो हो रहे हैं, नमाजें भी हो रही हैं, हम हज चूज कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, तलावत भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, तस्बीहात भी करते हैं, नहीं वहां एक सिस्टम है अल्लाह पाक का, याद रखें हराम नहीं चल पड़ेगा वहां पर, सकुलत मवाजीन हो, अल्लाह पाक कहते हैं कि यहां से जब आप कोई अमाल शुमाल लाभ लेके चलेंगे तो वहां मेरे सिस्टम होगा, सिस्टम क्या होगा कि मैं उसको तराजू पे रखूंगा। सुभानअल्लाह, किस पर? वाजीन हो, तराजू पे रखा जाएगा तेरा अमल, अमल तराजू पे रखा जाएगा। वो क्यों रखा, आप तराजू पे कोई चीज क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं? तोड़ने के लिए, वजन करने के लिए। तो वहां अमाल का वजन होगा, उस वजन पे काम चलना है, अमल पे काम नहीं चलना, बल्कि किस पे काम चलना है? वजन पे। और कोई कहे बहुत सारे अमाल होंगे तो वजन बढ़ जाएगा, वहां ये कानून नहीं है, कसरत मोतबर नहीं है वहां। याद रखें, मैं बहुत सारी चीजें लेकर जा रहा हूं, ये समझो काफी मेरी नमाजें हैं, मैं उसको रखूंगा तो वजन बढ़ जाएगा। हमें तो ये समझ आती है ना बात, कि खूब कर लो यार ताकि वहां वजन बढ़े। अल्लाह का ये कानून नहीं है, वहां ये ऐसे नहीं हो। जैसे मिसाल है, आप वजन कर रहे हैं, बहुत सारे जो है छोटे छोटे बेर होते हैं ना, बेर या छोटी तुमने चेरी वगैरह, उसको आप ताजू पे रख दें, छोटे छोटे काफी सारे रख दें, और दूसरे वह एकदम रखें लाके वो पूरा तरबूज, वाटरमेलन, वो तो रह गए बेचारे बेर, तो एक ही काफी हो गए तरबूज। तो हमारे अमाल में तरबूज चाहिए, बेर नहीं चाहिए, कसरत नहीं चाहिए, तरबूज चाहिए, तरबूज। एक ही अमल हो, तरबूज जैसा काम बन जाए इंसान का, यही याद बताया गया। बात समझे ना, हम इस चक्कर में ना रहे कि ज्यादा ले जाएंगे नमाजें, ज्यादा फला चीज ले जाएंगे, ज्यादा कसरत ये कर लो, कसरत का काम नहीं चलेगा, वजन का काम चलेगा, तोला जाएगा, वजन की जाएगी। या माल जो हमारे ये नमाज वजन की जाएगी, अगर फुस निकली, सब बहुत सो की फुस निकली, फुस समझते हैं जीरो, उस पर स्केल पे रखेंगे ना माइनस आ रहा होगा, माइनस जीरो, ये कैसी नमाज है? कहती ये तो 5000 नमाज है, सब पे आ रहा होगा जीरो, इतनी हल्की होंगी कि कोई वजन ही नहीं होगा। तो गौर से सुनने बात, इस घमंड में हम ना रहे कि हम कह जी हमने इतनी नफिल पढ़े हैं, इतनी वो पढ़े हैं फला, ये तो सही है लेकिन वजन है उसका। या तो ये चीज है कि अल्लाह ने हमें बताई ना हो, या हदीस में ना हो, या कुरान में, ये सब कुरान हदीस बता हुआ, जाने कौन, जिसको जिसको शौक ही नहीं कि हमने अगर कुछ लेना है, हमने उस दुनिया को हासिल करना है, शौक हो तो करते हैं ना। मुझे दुकान चलाने का शौक ही ना हो, मुझे क्या पता कौन ग्राहक आएगा, मैंने क्या सामान रखना है, कुछ उड़ जाए। और मुझे शौक हो, मैं दुकान खोलनी है, खूब रिसर्च करूंगा, ये दुकान मैंने खोलनी है, यहां से मैं ये चीज लाऊं, वहां से ये माल डालूं, शौक जो वो दुकान चलेगी। अगर हमें कुरान की इन आयात का पता चले कि अल्लाह ताला बार बार मुतवज्जा फरमा रहे हैं कि दुनिया आएगी, उस दुनिया में ऐसे ऐसे मकाम आएंगे तुम्हारे पर, तुम्हारी दायमी जिंदगी एक है, यहां तुम ऐसे ना हो कि यहां भी जलील होते रहे हो, यहां भी तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, और वहां जाकर भी ख्वाहिशात पूरी ना हो, वो क्या जिंदगी होगी? यहां भी मारे गए और वहां भी मारे गए। यहां तो जैसे तैसे गुजारे कर रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी तो ना छोड़े, कितनी हिमाकत की बात है। उसके लिए तो तैयारी करे आदमी, उसके लिए तैयारी के लिए फरमाए अमल करो, लेकिन अमल क्या, कसरत नहीं, वजनी हैवी। साहेब रूल मानिन ने एक रवायत लिखी है, अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह ने भी इसको रवायत की है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि या अल्लाह ये जो मीजान है इसमें किस तरह ताला तोला जाएगा, है क्या चीज, मुझे दिखा सकते हैं आप, मीजान कितना बड़ा है, उसमें किस तरह मल जाएंगे? नबी थे दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा हाँ तो दिखाता हूँ, रेडी हो जाओ। अल्लाह ताला ने खोल दिया, उनकी आंखों से पर्दा हटाया, और जो उन्होंने मीजान देखा उन पर रोब तारी हो गया, कांपने लगे, मीजान था पल्ला दिखाया इसका मीजान का, मगरिब और मशरिक पूरा कवर हो गया उससे, उस मीजान से, तो कांपने लगे और रोके कहने, या अल्लाह इस पल्ले को कौन भरेगा, कौन हो आज इसके पास इतनी नेकी हो, इतने अमाल हो कि इससे ये भर जाए, ये कैसे हो सकता है इतना बड़ा, ये इससे इससे कौन भर सकता है, तो कोई जन्नत जा ही नहीं सकता। अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि दाऊद जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाते हैं, सुनने वाला जवाब अल्लाह ताला का, जिस बंदे से रब राजी हो जाता है तो उसकी एक खजूर से ही पल्ला भर जाता है, एक खजूर से ही पल्ला भर जाता है। मोतबर तादाद नहीं, मोतबर क्या है? वसन है। तो पता ये चला कि एक अमल हो इंसान का, एक अमल, लेकिन क्या हो, वो इतना वसनी हो। वसनी कैसे होते हैं अमल, अभी ये सोच ले, हमने हर अपने अमल को वसनी बनाना है, कैसे होगा? इखलास से होता है। एक खजूर जो है तो पूरे भर देगी, कौन सी खजूर होगी? इखलास से उसने दी होगी। इखलास भी तशरीह करते हैं, इखलास क्या होता है कि जो अमल खालिस और खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए जाए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए किए जाए, वास्ते अपने रब के किया जाए, कोई उसमें मलूसी ना हो ख्वाहिश किसी किस्म की भी, माइनस हो, अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो, तो वो इतना हैवी हो जाता है वजन कि पूरे जो अल्हम्दुलिल्लाह वजन की जगह होगी हमारी पड़ेगी, उसको भर देगा, छुका देगा नीचे। यह इस आयत के अंदर तर्जमा और तफसीर इसकी। अमल करें जरूर करें, कसरत पे ना जाओ, एक हो, लेकिन इतने इखलास के साथ किया जाए वो अमल कि खालिस वो अल्लाह के लिए हो, किसी किस्म की बनावट ना हो, रिया ना हो, दिखावा ना हो, तलब ना हो। यह है क्या मसला है, कितनी बड़ी मेहनत इस पे आप देखें। सिजदा कर रहे हो तो बस अल्लाह के लिए हो, खरात कर रहे हो तो अल्लाह के लिए हो, सूफी बन रहे हो तो अल्लाह के लिए हो, जिक्र कर रहे हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी हाथ पे बैत हो रहे हैं तो अल्लाह के लिए हो। हाँ तो खिलाफतें चाहिए और पता नहीं क्या कुछ चाहिए, वलान चाहिए, जिन्हें तो फला हाथ पकते हैं, बस ये भी मेरे खान का, वो भी मेरे खान का, लोगों को बताते फिर हम तो खलीफा हो गए, पीर बनने का शौक, अल्लाह का नाम इसलिए सीखने पीर बन जाए, मालाना शुरू हो जाए, दुनिया वाला चुगना शुरू हो जाए। जो इस किस्म की बातें करे उसको फौरन निकाल दिया जाए, अपने सहन से निकाल दिया जाए कि यह आदमी फ्रॉडी है। अल्लाह का मेयार क्या है कि पाने वाला रास्ता तो अल्लाह का तलाश कर रहा है, जिक्र तो अल्लाह का कर रहा है, और मतलब दुनिया का है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। नमाज अल्लाह की, सिजदा अल्लाह को कर रहा है, इतना सातना मुस्तकीम उसको कह रहा है, और नमाज में मतलब कोई और है तुम्हारे, कितना फर्क है। इखलास, तब तक किसी अमल में इखलास नहीं होगा, ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे मेहनत करनी है। सूफी हजरात इस पे मेहनत करते हैं, या आप देखते हैं खानकाओं में क्या होता है, पुरानी खानकाओं में बातें कर रहा हूं कि लोग क्या करने जाते थे, क्यों अल्लाह वालों के पास बैठते थे, क्यों सारी सलात अल्लाह का जिक्र करते थे, सूफिया कहलाने के लिए नहीं, सूफी बनने के लिए नहीं, बल्कि क्या, अल्लाह ताला हमारे दिल में वो नूर पैदा कर दे कि खालिस तेरी रजा आ जाए, दिल को बनाते थे, दिल को निखारते थे कि अल्लाह ताला खालिस और खालिस तेरी रजा के लिए हमारी हर चीज हो जाए, और कुछ भी ना हो, दुनिया की चीज तलब ही ना हो किसी किस्म की। ये मकसद होना चाहिए हमारे हर अमल के साथ, हमारी मेहनत करें जब दिल को संवारने के लिए, खासतौर पर तस्किए की इसलाह के लिए जब मेहनत करें, किसी अल्लाह वालों की मजलिस में जाएं बैठें, तो वाहिद एक मकसद हो कि अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा बना दे कि जिसमें इखलास आ जाए। इखलास नहीं होगा तो सारे अमल हमारे बेकार होंगे। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, हदीस भी थे, और सूफी भी थे। तो सूफिया ने रंग में एक बात रवायत की है, बहुत बहुत उमदा, कहते पुराने जमाने में एक राहिब था जिसको हम सूफी कहते हैं, उनको राहिब कहते थे ईसाइत के अंदर। तो अपनी खानकाह में अपने जो हुजरा था उसने कई साल अल्लाह की इबादत की, तखली में बैठ कर अंधेरे के अंदर, शौक था अल्लाह को पाने का, मेहनत करता था, सजूद जिक्र जो कुछ भी था सारी जिंदगी उसने उसमें गुजारी। एक दिन उसने झांक के देखा अपने खानकाह से बाहर, देखा तो बड़ा खूबसूरत सीन नजर आया उसको, परिंदे चहचहा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बादल उठ रहे हैं और जनाब खूबसूरत नजारे हैं, हल्की हल्की जनाब हवा चल रही है और बहुत ही रंगीन मौसम बेहतरीन। तो इतने सालों से इबादत के अंदर मस्त था, जब सब चीजें देखी उसने कहा चलो थोड़ा मैं ताजी हवा ले लेता हूं। किस मुकाम का वो बुजुर्ग होगा आप देखें, कहते थोड़ी सी ताजी हवा ले लेता हूं। वो अपने हुजरे से निकल के मैदान में आया। हर मुकाम पे अल्लाह की जी दुनिया जो है, ये मैं बताया ना आपको, टेस्ट है ये सारा, जिंदगी से लेके कब्र तक इंसान आजमाइश में होता है। नफ्स से छुटकारा नहीं हासिल कर सकता, हर वक्त नफ्स उसको पकड़ने के चक्कर में होता है कि इसको निकलने ना दो यहां से, सांस निकलने तक याद रखे। कितने बड़ा साहिब करामत कशफ वाला बुजुर्ग भी बन जाए, शर्तें भी आ रही हैं उसको, सब कुछ हो, लेकिन इतने जितना बुलंद होता है इतना मोहतात होता है कि हर सांस पे वो फिक्रमंद होता है कि ये सांस मेरा ईमान के साथ निकले। और कामयाबी फिर वही शख्स है, आखिर जिसकी बन गई बस फिर काम बनता है इंसान का, सांस निकलते हो सही मोमिन ईमान के साथ चला गया। अब इतना बड़ा आदमी बाहर निकला, पूरा कॉन्फिडेंस उसको कि मैं तो अल्लाह को याद करने वाला सब कुछ है, मुझे कोई क्या करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आजमाइश डाल दी इस पर, जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हर इंसान का। वहां से झांक रहा है, देख रहा है, देखा एक औरत वहां से गुजरी खूबसूरत किस्म की, उसने औरत को देखा, औरत ने उसको देखा, सभी साहब उसको देख रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, औरत ने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दे दिया। वो करीब आई, वो भी करीब आ गया, कहते बड़ा अच्छा मौसम है, कहता मौसम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा चेहरे पे नूर है आपके, अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं। बातें शुरू हो गई, बात बढ़ती बढ़ती रही, वही शेर मुझे याद आता है, पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो गए, रास्ता रास्ता वो मेरे दिल के मेहमान हो गए। शैतान आस्ता आस्ता खींचते ना, पहले आस्ता आस्ता कांटा मारा उसने, क्योंकि शरीर का असूल है। यहाँ सुन ले, कोई बुजुर्ग कोई पीर ये दावा नहीं कर सकता कि एक गैर महरम औरत उसके सामने है और वो अपने आप को बचा लेगा, ना ही वो औरत दावा कर सकती है कि मैं उसे बच जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह का कानून है ये, गैर महरम है। मुंह बोली बहन, मुंह बोली माँ, मुंह बोली पत्नी क्या होते हैं बहने और क्या कुछ बना लेते हैं, मुंह बोली जिसको कहते हैं, ये तो मेरी मुंह बोली, ऐतनी मेरी बहन, ऐतनी मेरी चाची लगती, ये तो मेरी माँ जैसी है। कोई माँ बहन किसी एज का किसी स्टेज पे कोई एतवार नहीं, क्यों? अल्लाह ने एक हद खींच दी है कि जहां एक मर्द और एक औरत और गैर महरम है, कोई भी हो, पीर हो, कुछ भी हो, कोई सब टेस्ट होते इंसान के, किसी पर एतवार नहीं, किसी पर एतबार नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हाथ खींच दिया कि जब यहां ये दो होंगे तो एक इनके साथ बीच में शैतान जरूर हो जाता है। वही जैसे मैंने कहा, पहले जहां फिर जाने जहां फिर जाने जाना बन गया, पहले पीर साहब हजरत साहब करते करते करते, तो उसने भी ऐसी किया, उसने हद तोड़ी एक शरीयत की। एक हद शरीयत की टूटती है इंसान जहन्नुम के घड़ों में चला जाता है। ये रास्ता बहुत बारीक है भाई, मैं तो जिक्र करता हूं, मैं तो फलां करता हूं, कुछ काम नहीं आता। अल्लाह ताला इतने नाराज होते हैं कि मेरे कानून को कैसे तोड़ सकते हैं, एहतियात कैसे की। गैर महरम जो हुक्म आया कि उसी तरह रहना पड़ेगा, बिल्कुल वही पर्दा, वही चीज, वही नजदीक नहीं किसी किस्म। आज तो औरतों की जिन निकालते हैं बैठ के लोग, हाथ पकड़ के फूंक पकड़ के, पता उसके क्या जिन निकलते हैं, अपने जिन निकलते हैं आदमी का, सब गैर शरीफ आता है। उसके नताइज आप उठा के देखें, स्टोरी है। किसी ऐसी जो आलमों के पास जाके बैठे एक हफ्ता, आपको स्टोरी पता लग जाएंगी, कैसी कैसी स्टोरी औरतों की और क्या क्या हाल होता है, कैसे कैसे जिन निकलते हैं। हर काम अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर बयान फरमा दिया मेरे दोस्तों, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कभी इसको ना छोड़ना, उसमें बरकत देखना, नूर उसके देखना। एक खत अल्लाह ने कायम किया, खत्म, वो आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। अब इतनी इबादत, इतने सजूद, 40-50 साल बंद कमरों के अंदर रोजे फाके, अंदाजा लगाएं आप, एक सेकंड में गया, आखिरी गुनाह में चला गया। گناہ اختیار کر لیا. جب گناہ اختیار کر لیا تو وہ ختم. اور دیکھیں اللہ کی کیسے آزمائش تھی. یہ عبداللہ بن مبارک نے لکھا ہے قصہ, تو معتز تھے بہت بڑے. ہوا کیا پھر اس کو کیا پتا تھا ظالم کو کہ میں اتنی ساری میں نے عبادت کی ہے اور ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ٹیسٹ ہو جائے. چند گھڑی باقی تھی اس کی موت کے لیے. وہ فارغ ہوا اس وقت ملک الموت آ گئی, تیری سانس تو بھائی اتنے باقی ہیں, چھٹی کر اور موت آ گئی اس کو. ظاہر یہ ہے بھائی زندگی. اب آپ سوچیں کہ کتنے احتیاط سے زندگی, ہم کیسے بے پٹے جانوں کو طرف پھر رہے ہیں, کیسا حساب ہوگا وہاں پر, کیا کتاب ہوگا اور کیا سزائیں ہوں گی. سوچیں آپ صاحب, آپ کیا ہوا پیش کیا اللہ کے دربار کے اندر, حاضر ہو گیا اللہ نے موازین ہو تو تولیں گے, ہر عمل کو پیش تو کیا جائے گا, ترازو میں رکھے جائیں گے. انہوں نے کیا کیا, اس کے سارے اعمال لے آؤ بھائی حساب کرتے ہیں اسے. تب ان کی عبادات رکھی جا رہی ہیں ماشاء اللہ, او ڈھیر نیچے ہوگی وزن کے ساتھ وزن. اتنی عبادت کس نے کی تھی کہ بھائی اس کا غلط کام کو لے آؤ. کسی غلط کام میں تو ایک ہی نظر آتا ہے جس بوس قتل غلط کام اس کا, کہتا وہ لے آؤ بھائی ایک ہی غلط فہمی, عبادت تو بہت ہے اس کی, ایک ہی نافرمانی کی نا اس نے. اور جب زنا لا کے رکھا تو ہوا کی طرح اڑ گئے سارے اس کے رشتے مانتے عبادت. وہ سر جھکائے بیٹھا, حکم جاری ہو گیا. کس کیوں؟ فمو حاویہ, جن کے وزن کم ہو جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ حاویہ میں جائیں گے. اب دیکھیں وزن کتنی بڑی چیز ہے. جو نمازیں بغیر اخلاص کی ہوں گی ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ حاویہ جنہ, یہ ماویہ جو سب سے بڑی جو دوزخ کی جگہ ہے اس کے اندر پہنچا دیا جائے گا اس انسان کو جس کے وزن کم ہوں گے. بتائیں اخلاص کتنی بڑی چیز ہے, وزن عمل کا کتنی قیمتی چیز ہے. تعداد کو نہ دیکھ, اخلاص کو دیکھ. اب جو گئے سارے اس کا عمل ختم, ایک گناہ پہ سب ہوا کی طرح اڑ گئے ختم. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے انصاف ہوگا, ایک ایک چیز لائی جائے گی. ایسا تو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قائم اس لیے کیے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو یہاں سے نکل جائے. کہتا ہے کچھ اس کا کوئی عمل ہے, اور کہ جی عمل تو یہی تھے جو سارے ڈال دیے. کہتا ہے میں جانتا ہوں ایک عمل, سو جس نے اس میں عبادت کی فرمایا اس میں ساری عبادات میں مجھے وہ عمل اس کا محبوب تھا. وہ کیا عمل تھا آپ دیکھیں. کہتے شاید اس کو یاد بھی ہو یا نہ یاد ہو, وہ بھی کر کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بھی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت لگتی ہے, اس عمل کی نہیں لگتی. کیا عمل تھا؟ کہتا ہے اس شخص نے ذرا ایک دفعہ کھانا کھانے بیٹھا, تھکا عبادات سے برا حال, کچھ بھی اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا. اتفاق سے چند ٹکڑے تھے روٹیوں کے, اور کئی دنوں کے فاقوں کے بعد روزوں کے بعد روزہ کھولنا ہو کسی آدمی نے مجھے بتایا, اور اس نے روزہ کھولنا ہو تو کھانے کے لیے چند ٹکڑے اس کے پاس ہو کتنی قیمتی چیز ہوگی اس کے لیے. ہو بھوک کے اللہ نے کہا ہم نے اس کو آزمایا, کسی ایک ساحل کو بھیج دیا فقیر کو کہ بھائی میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں, کچھ ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں جی میں تجھے اللہ کے نام پہ تجھے دیتا ہوں, اللہ راضی ہو جائے مجھ سے, تو کھا لے میں نہیں کھاتا. فرشتے کہیں اچھا یہ عمل کہتا ہوں, یہ ڈال لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے. اللہ اکبر, جس پہ وہ اماؤنٹ ڈالا گیا سبحان اللہ, گناہ غائب ہو گیا. پورا جو اس کی میزان تھی بوجھ سے نیچے دب گئی, اور جہنم سے جنت کا فیصلہ ہو گیا اس کا. یہ اخلاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے یاد رکھو کہ کوئی اگر نیکی کا موقع تمہیں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے اس نیکی کو تم اخلاص کے ساتھ ادا کر دو اور باقی جتنے اعمال تم نے کیے ہوں وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو, وہ نیکی تمہیں بخشا دے اور تم جنت میں نکل جاؤ. کسی نیکی کو مت ضائع کرو, کیا پتہ اس نیکی میں ہمارا اخلاص بڑھ جائے, ہمارا اللہ کی خوشنودی مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, تو کتنی بڑی چیز ہوگی. تو کہنے کا مطلب دوست یہ ہے کہ ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اخلاص ہو. اور یہ کہاں سے ملتی ہیں چیزیں؟ خانقاہوں سے ملتی ہیں. مجھے ایک واقعہ ایک اور یاد آ گیا خانقاہ کے نام سے, دیکھیں اخلاص ملتا کیسے. بہت بڑے شیخ تھے اور مریدوں کو تسکیہ کراتے تھے خانقاہ کے اندر. ظاہر ہے وہاں تو نفس کو مارا جاتا ہے, اور نفس پرست لوگ تو آ نہیں سکتے, وہ تو ڈرامے باز ہوتے ہیں, جھوٹے بےمان لوگ ہیں وہ تو. جو نفس پرست لوگ آ کے بیٹھ جائیں بیچ میں, وہ تو اوروں کو بھی خراب کرتے ہیں. وہاں تو نفس مارا جاتا ہے, نفس مارنے کے لیے چیزیں خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. ڈائریکٹ نفس سے لڑائی ہوتی ہے, مناظر بھی نفس سے ملتے ہیں, درجات بھی نفس سے بلند ہوتے ہیں, قرب بھی نفس سے ملتا ہے. نفس پرستوں کی تو وہاں جگہ نہیں ہے بالکل بھی, اوروں کو گند پھیلاتے ہیں. تو بہت بڑا مجمع الحمدللہ ہوتا تھا نفس تسکیہ کا. تو ایک دفعہ شیخ نے کہا کہ شیخ کی طرف سے کہا کسی نے کہ بھائی خانقاہ میں کوئی ٹینشن تھی یا کچھ ایسا معاملہ تھا, کہتے کوئی اگر اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو فبیحا, اور الحمدللہ حصہ لو, بہت ثواب کا کام ہے یہ. کسی نے کہا شیخ کی خانقاہ میں یہ کچھ حصہ ڈالیں, تو سب خاموش رہے. درویش تھے, ان کے پاس نہیں ہوں گے اتنے پیسے, تو ایک جو مریض تھے وہ کافی ویل اپ ٹو ڈیٹ, انہوں نے کہا اٹھے اور گئے, کافی دینار سونے کی اور چاندی جو کچھ تھی لا کے مجھے تھا شیخ کے ہاتھ میں رکھ دیا. جو انہوں نے رکھا, وہ جا کے شیخ کو دیا, شیخ کے سامنے رکھا, تو وہاں سبحان اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ کمال کر دیا. یہ ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا. باجی بھائی مبارک ہو جناب, آپ تو بہت بڑا جی قسم کیا کام کیا جی, بہت ہی. اب وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئی, واہ 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 جو ہوئی, تو سنتے رہے کہتے میرے چیزیں واپس دے دو اپنا کہ میں نے دیتا, غلطی ہو گئی تھی مجھے, اپنی ضرورت یاد آ گئی ہے, میں سوری کرتا ہوں, مجھے میرے پیسے واپس دو. ہاں یہ کیا کرے تو, کہتا نہیں مجھے اپنی ضرورت یاد آئی, میں نے نہیں دینا ہے, میرے پیسے واپس دو. انہوں نے اپنی گٹھڑی اٹھائی سونے کی, ہاں اٹھا کر مغل میں سلام کر کے چلے گئے. ان کا مال تھا, کہتا میں نہیں دیتا. سب بڑے حیران, یہ سب اب کیا شروع ہوا, اب لان تان شروع ہو گئی, شرم نہیں آتی, بے وقوف انسان. اب ایسے ہی کہیں گے نا لوگ, دیکھو کوئی چاٹتا ہے تھوکتا ہے, کوئی تھوک کے چاٹتا ہے, کیا بدتمیزی کی اس نے, کتنا بے اد آدمی ہے, اور جو اس پہ لانتیں پڑنی شروع ہوئیں اچھی خاصی, اس متارا کو چلا گیا گالی کھا کے مریض جو تھا. رات کا وقت ہوا, بالکل رات ہو گئی, تنہا ہو گیا, پتا تھا شیخ کی عبادت کے ٹائم میں خانقاہ میں کیلے ہوتے ہیں. وہ چپ کے مال اٹھا کے پھر آیا, گیا اپنے شیخ کے سامنے, کہتے ہیں حضرت یہ وہی مال ہے جو میں لے گیا تھا آپ کے سپرد ہے. تو فرمایا میں اس وقت بھی سمجھ گیا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں. حضرت سمجھے, ہاں کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت میں نے مال اللہ کی رضا کے لا کے دیا تھا خالص, اور جب وہاں سے تعریفیں شروع ہوئیں سبحان اللہ, تو میں نے دیکھا میرا نفس موٹا ہونا شروع ہو گیا, وہ کروٹیں بدلنے لگا, اور مجھے مزہ آنے لگا اپنی تعریفوں میں. تو میں نے کہا میں تو برباد ہو گیا, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, یہ تو مجھے جہنم کے اندر بھیج دے گا, میں تو کچھ اور سوچ کے لے کے آیا تھا. تو فوراً میں نے اپنے آپ کو آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے کنٹرول کیا اپنے آپ کو, کیسے مجھے سبحان اللہ, آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور میں فوراً مجلس سے بھاگا. پہلے گالیاں سنی اس طریقے سے, جب میں نے کہا گالیاں سن کے جب ٹھنڈا ہو گیا نا میرا نفس بالکل ٹھیک ٹھاک سطح پہ آ گیا, لانتے ملے جوتے پڑے میرے خوب ٹھیک ٹھاک, جب آ گیا بالکل ٹھنڈا, تو پھر میں اٹھ کے گیا, اور اب جب میں دیکھا کوئی نہیں ہے, اب یہ سب مال آپ کا جہاں چاہیں خرچ کریں. شیخ اٹھا اور سینے سے لگایا, جہاں جب سینے سے لگاتا ہے شیخ تو جو ہوتا ہے سینے وہ بھی دیتا ہے اس کے اندر. تو میرے بھائیو دنیا میں بھی حقیقت میں یہ کامیابی جو انسان کی ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے, بندہ اللہ کا ہو جائے, بس سانس بھی نکلو تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے, عبادت بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ہو, نفس کو پورا کنٹرول کر لیا تھے پورا, تو پھر کتنا بڑا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے, کتنا بڑا کہ تجھے تیرے من کی زندگی ملے گی, من مانی زندگی. آپ دیکھیں کہ صحیح, یہ ایک دن کی زندگی نہیں ہوگی, دو دن کی, یہاں تو کاؤنٹ ہو رہا ہے نا, ابھی 30 دن کی زندگی, 40 سال کی زندگی, یہاں تو کاؤنٹ ہو رہا ہے, آپ کو سال دن دیے گئے, اور وہاں کیا دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں, اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے, فور ایور دیا جا رہا ہے, فور ایور. اور جو دے دیں گے وہ لیں گے نہیں, اس میں بڑھوتی ہو سکتی ہے, کمی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, اللہ پاک کے جو عنایت میں ایک دفعہ ہو گیا انعام, وہ واپس نہیں لیا جائے گا, بڑھے گا ہی وہ, گھٹے گا نہیں. نہ وہ بڑھاپا ہوگا, نہ وہ موت ہوگی, کچھ ایسی چیز ہوگی نہیں جو آپ کو غم دے سکے, आप ये देखिए, सिर्फ ये है कि यहां अपने थोड़ा सा चंद चंद साल समझने कितने गुजर गए पता ही नहीं चला, इस पे हम कंट्रोल कर लें। और इखलास के लिए जो मेहनत बताई गई है कुरान में हदीस में, वो क्या मेहनत है? दिल को सही करे आदमी, जब तक ये दिल सही न था आदमी का, तो उतने क्यों दिल सही होता है इंशाल्लाह। जो तरीका बताया अल्लाह ताला ने उसे डेफिनेट सही होगा, कैसे नहीं होगा, कदम उठा दे देखें सही होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कदम उठाएगा उस वजह से कि मैं अपने दिल को सही करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। उसके बाकायदा फोकस को देखे, जांचे, पड़ताल करे, अपनी गलतियों को शेख से सुने, और जो शेख फिर उस पर नसीहत करें उसको समझे, उसको खत्म करे। इसको कहते हैं कि भई ये अपने दिल की सफाई और कदर चाह रहा है, मतलब आप अपने शेख के पास गए, आप में कमी नीचे जा रहे हैं, वो आपको समझाता है, बताता है, डांटता है, समझाता है, आप फिर करते हैं अपने आप, इंसान ही है ना। इसी तरीके से इंशाल्लाह मेहनत से इंसान बनता चला जाता है उसका दिल। जब दिल बन जाता है आदमी का तो उसमें इखलास आ जाता है, अल्लाह आ जाता है, सब चीजें निकल जाती है। इस मेहनत के साथ अल्लाह ने बताया अल्लाह का जिक्र करो और जिक्र करो कसरत के साथ, और ऐसे करो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस नियत से करना चाहते हैं अल्लाह का जिक्र, कि हम अल्लाह की रजा हासिल करें, खुशनुदी हासिल करें, हर फेल और हर अमल हमारा जो है वो अल्लाह के लिए बन जाए। वरना कसम खा के कहता हूं मैं आपसे कि सुबह से लेकर शाम तक तजिया कर लें आप, बहुत मुश्किल है कि कोई इबादत का एक हिस्सा भी हमें से मिल जाएगी जो खालिस अल्लाह के लिए हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर चीज में नफ्स आड़े आता है और सोचता है थोड़ी सी अच्छी मैंने बात कर दी, हाँ देखें दो बड़ा असर हुआ है, कैसी बात की मैंने, मजा आया नहीं है। कोई नसीहत करे आदमी, कोई यानी हर फील्ड इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है आप पूछ नहीं सकते, हर फील्ड। तो ये तो इतनी खतरनाक, क्योंकि ये वजह दुनिया टेस्ट है। अल्लाह ताला ने कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे, क्या हसन जो अय्युकुम हसन वाला कसीर नहीं कहा, क्या कहा है हसन अमल, जो खालिस अमल मेरे पास लेकर आएगा। हम लोग तादाद नहीं, क्या 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 अय्युकुम हसन अमल, अच्छा अच्छा खालिस, इस पर हम जोर नहीं देते, कहीं कुरान पढ़ते भी हैं समझते नहीं है, उसको जीप नहीं जाते हैं, उसको तस्वर नहीं करते हैं कि अल्लाह हमें क्या मैसेज दे रहा है, किस मुतवजा कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो आज का जो पैगाम हमारे पास पहुंचा है वो ये है कि हमें अपने अमल को देखना चाहिए, अपनी इबादत को देखना चाहिए, और इखलास के लिए मेहनत करनी चाहिए इस पर। और ये दुनिया जो है ये हमारे लिए आजमाइश है, इसमें जिस हाल में अल्लाह पाक रखे हमें, यहां हमने अल्लाह की मर्जी के साथ रहना है। अर्ज़ अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें बस ये बिस्तर देना है, अब मैं बिस्तर पर लेट के सोचूं मैं ये बड़ा बिस्तर ले लूं और मैं ये क्विल्ट और ले लूं और जनाब छत को देखूं, नहीं यार लाइटें और लगा लूं, सोच ही रहा हूं ना मैं, यूं क्यों ना कहूं अल्लाह ताला शुक्र है तेरा तूने मुझे बिस्तर भी दे दिया, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, तेरा बड़ा करम है, कल तू ये भी ना दे मैं क्या कर सकता हूं, कैसी नींद आएगी मीठी आपको, आएगी ना, थकू ना सोच सोच के मैं, यार ये हो जाए तो ये कर लेंगे, इसको कर लेंगे तो उसको कर लेंगे, ये होएगा तो ये हो जाएगा, बस ये सोच सोच के अपने बर्बाद आदमी करता रहे। ये लगा कहता है ये वो शख्स है कि जो ख्वाहिशात में रहेगा कभी हिल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमें एक तसव्वुर करना है कि बस हमें जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते चले जाओ, बस जो कुछ यहां मिल रहा है किसकी मर्जी से मिल रहा है, अल्लाह की मर्जी, बीमारी दी है किसने दी है, अल्लाह की मर्जी ये थी कि मैं बीमार हो जाऊं, बस खत्म, इलाज कराते रहो ठीक हो गए नहीं तो खड़े, अल्लाह मर्जी थे क्या कर सकते, सेहत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सेहत दे दी, अल्लाह की मर्जी सेहत दी, किसी को नीचे रखता है किसी को ऊपर रखता है, किसी को बीमार करता है किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ हालत में रखता है, सब क्या चल रहा है अल्लाह की मर्जियात चल रही है, अल्लाह की मर्जी है, ना मैं आपको देख के जलूं ना कोई मुझे देख के जले, ना मैं उस पर हसरत करूं ना उस, जब ये ख्याल आ जाएगा ना बीच में कि सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, उसको देखें इस मान लीजिए अल्लाह की मर्जी के साथ ये है मेरे साथ ये है खत्म, किससे खत्म, घबराने की क्या बात है, वो आया जी देखें जी ये इसको तो चार दिन हुए हैं आए हुए, देखो उसकी तो इतनी दुकानें हो गई, उसके इतने कारोबार हो गए, हम इतने दिनों से हैं हमारा कुछ चला ही नहीं, जहां हाथ डालते हैं सब मिट्टी बन, हम स्टोरी सुनते हैं, नए नए आए थे उसने ये कर लिया कारोबार, उसने फला किया तो ये कर लिया, मैं हम इतने दिनों से आए हैं हम हमारा कुछ भी नहीं बना, मिल गया। अल्लाह ताला कहता है कि मिलना फिर भी तुझे वो है जो मेरी मर्जी होगी। कितना जोर लगा ले, मिलना फिर भी वो ही है जो मेरी मर्जी होगी, बल्कि क्या और तू जलील खार हो जाएगा दुनिया में, लोगों के कर्जे तेरे पे चलेंगे, लांत मान तुझे पड़ेगी, जलील तू होगा, नमाजें तेरी खत्म होगी, खराफात तुझ पे जुड़ेंगी, ना तू दीन का रहेगा ना दुनिया का रहेगा, ना दीन का ना दुनिया का। जो अल्लाह की मर्जी पे राजी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी किस्मत हावे कारोबार शुरू किया हदूद शरिया के अंदर, यानी ख्वाहिशत है मैं कारोबार चलाऊ अपना सब हदूद शरिया में, आप जो ख्वाहिश पूरी करें अल्लाह इजाजत देता है, शहवाद किसमें नहीं है, आप ख्वाहिश कह रही है ना भाई, शहवाद है ना, औरत करते रहते हैं, अल्लाह ने हाथ दी जब शादी कर ले खत्म, उससे पूरी कर ले, ख्वाहिश तो पूरी होगी तेरी, खत्म हो गया। तो ख्वाहिश पूरी करने का एक तरीका अल्लाह ने बताया है, लेकिन उससे आगे जब बढ़े तो वो तो फिर आदमी खत्म हो जाता है। तो बस हमें एक काम सीखना है कि जब भी हो खुशी नजर आए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी यही थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें क्या बीमारी, हाँ क्या अल्लाह की मर्जी थी, इलाज करा रहे ठीक, अगर ठीक हो गए फिर अल्लाह की मर्जी ठीक करना, उसकी मर्जी में नहीं हुआ तो उसकी मर्जी ये थी बीमार हो जाओ, बीमारी रह क्यों, उसकी हिकमत है पता नहीं क्यों ऐसे किया इस, और जो अल्लाह की हिकमत होती है वो हमेशा अजीम होती है, वो तो हकीम है। मेरी लड़की हो गई जी, मेरे लड़का हो गया, उसकी लड़की नहीं हुई, उसके लड़का हो रहा है, और लड़की हो रही तो रो रहे हैं, आए जी साढ़े तो होते कुछ नहीं, उसके देखो लड़का उसको, ये सब जो है वो लोग हैं इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, ये सब वो चाहते हैं कि जो हम चाहें दुनिया में, वो लोग हैं वो चाहते हैं कि दुनिया हमारे हमारे मर्जी से चले, हम कहें लड़का हो तो लड़का होना चाहिए, हम कहें जी मेरे बेटे की ये हो तो फला होना चाहिए, हम कहें जी ये होना चाहिए, हम चाहते हैं दुनिया हमारी मर्जी, कितनी बड़े शिर्क है ये आप मुझे बताएं, कितना बड़ा शिर्क इंसान के अंदर छुपा हुआ है कि अपनी मर्जी से दुनिया को चलाना चाहते हैं, वो रब कादिर मालिक दुनिया जिससे कांपती है, एक पत्ता जो नहीं हिलता उसके हुक्म के बगैर, एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक जर्रा नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर, एक मच्छर नहीं उड़ सकता उसके हुक्म के बगैर, इंसान को देखो दो टांगों का जानवर, अपनी हुक्म से अपनी मर्जी से अल्लाह की हुकूमत को चलाना चाहता है, कभी हुआ है ऐसा, हो सकता है, फिरौन को देख ले आप, नमरूद को देख ले आप, कैसे कैसे बड़े बड़े फिरौन आए, अगर ऐसा होना होता तो आज हिस्ट्री कोई बदली होती दूसरी हिस्ट्री, मतलब आज तक कोई कामयाब हुआ है जिसने अपनी मर्जी से दुनिया को चलाना चाह। मेरे भाई मैं भी समझ जाऊं आप भी समझ जाए, अल्लाह के खालिस गुलाम बन जाए, ताबेदार बन जाए, सब गलत कामी छोड़ें और कहें अल्लाह ताला जो तेरी मर्जी वही हमारी मर्जी, बता दिया तुम्हें मर्जी है बस, जब हमने ये कह दिया जो तेरी मेरी मर्जी, अल्लाह वाह कहेगा ठीक है, जब तू मरेगा तो उस वक्त मैं कहूंगा आ जा तू भी राजी तो मैं भी राजी, कुरान ने कहा आ जा फिर तू भी राजी तो मैं भी राजी, तो किस्सा खत्म, आ जा फिर जन्नत तेरी, अब जो चाहे तू अपनी मर्जी से करता, फिर शराब पीने पी ले, औरतें कहते ढेर है औरतों को चुन जितनी चाहिए ले जा, ये पड़ी औरतें जितनी चाहे ले जा, महल सारे महल तेरे जितने चाहे महल ले ले, घूम गार्डन नहरें, ये दूध की नहर, ये शहद की नहर, ये पानी की नहर, जिस नहर में जा तू उंगली मार वो नहर कुछ वो ही देगी, इस बात ऐसी जिंदगी है, तो उस जिंदगी को पाने के लिए यहां लागे गुलाम बनना पड़ता है, बस लागे गुलाम हो जाए, बदमाशी छोड़ें, हरामकारी छोड़ें, उल्टी सीधी हरकतें छोड़ें, बस सलाम सलम सलम हो जाओ, चुक जाओ अल्लाह के आगे, अल्लाह ताला बस हमने हाथ बांध लिए हैं, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा मालिक है, जिस तरह तू कहता जाएगा डोर तेरे अख्तियार में है, जिस तरफ चलाता जाएगा चलते जाए, जहां रुकेगा वहीं रुक जाएंगे, बाकी तू हमें पता नहीं, यहां आ गए जी मिसाल के तौर पर बस समझ, यहां आ गए तो बस जन्नत फिरदौस में आ गए, जिसका वीजा लग गया जन्नत फिरदौस, जिसका नहीं लगा वो रो रहा है, ये क्या बात है, सुभान जहां जहां अल्लाह रख रहे हो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों गलत साइन करते हो, क्यों फ्रॉड करते हो, क्यों अस्तगफिरुल्लाह ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि बस पूछो ही ना क्या, यहां रहने के लिए कुछ दिनों में देखा उनके जनाजे उठते देखा कि डब्बे बंद हो फिर वहीं चले जा रहे हैं वापिस, मैं खुद देखा जिंदगी में आए झूठ बोला फ्रॉड किया दो साइन किए पासपोर्ट ये बनाए थोड़े दिन में मौत आ गई, जवान लड़का जवान मौत आ गई, अभी मुटकी गया मुझसे रात को, वो डब्बा बना पाकिस्तान वापिस जा रहा है, मैं बताऊ कितने फ्रॉड कर लिए इस दुनिया में रहने के लिए शख्स ने,
जाना कहाँ हुआ, फिर उसी मुल्क में जहां से समझ के आए थे बहुत अमीर हो जाऊंगा यहां पर, यहां अमीर होने आया ना, यहां यहां कौन सा बुखारी का दर्श सीखने आए, सब आदमी इसीलिए आए, कोई फिक्र नहीं पड़ता, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ भाई, अल्लाह पूरी दुनिया में एक ही है वो समझ लो। एक शख्स है ना हमारे हजरत के पास, मैं भी वहीं बैठा था, कहते सब मैं फला फला मुल्क में जा रहा हूँ, ये बाबू क्यों मेहनत है पिछले क्यों जा रहे हैं, कहते जी वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह नौकरी करेंगे, रिज़्क लेंगे, फला करेंगे, तो हजरत फरमाते हैं कि अच्छा फिर वहाँ का खुदा को मेरा सलाम कह देना, कि जो रिज़्क अल्लाह ने यहाँ देना है वहाँ भी तो वही अल्लाह है, कहते हैं फिर वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कह देना, तेरा खुदा कोई और होगा वहाँ पे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे सच्चे गुलाम बने, जिक्र की मजलिस है ऐसी और कोई मतलब नहीं इसका, इस मतलब को लेके आया करें कि ये जो दिल है ना हमारा ये बन जाए, दिल की दुनिया बदल जाए अल्लाह के फजल से, इसमें इखलास आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह की रजा आ जाए, अल्लाह की खुशनुदी आ जाए, जितनी दफा मिले मजलिस नेमत है, जिक्र की मजलिस मैं अपनी नहीं कह रहा, जहां मिले जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ, इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र करें, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें, और याद रखें वसवसे शैतान निकालने की कोशिश करते हैं, ये सुन लें। मिसाल के तौर पर मैं आप कुछ बातें बता रहा हूँ सुन रहे हैं, बीच में ऐसे लोगों के जी हाँ ये बात हमें हम पे आ गई, हम पे ताना पड़ गया, हमें कह दिया, क्योंकि ऐसी बातें होती हैं कि जहां जख्म होता है ना आप देखें तो वहां चुप जख्म पे तो फिर जहां पानी डालेंगे चुभेगा ना, तो ये तो आज बारिश है ना, ये तो जन्नत की तरफ से आई, अच्छा जिन पे जख्म होते हैं फिर मिर्चें लगती हैं लोगों को, ठीक है, तो जिनको मरहम लग रहे हैं चुप करके मरहम लगवाते रहे, क्यों छूट जाते हैं, नहीं जी क्या जाना हम पिताना हो गया, हम तो ये थे हम तो फला, खबरदार अल्लाह ताला की किसी नसीहत पे नखरे मत करना, याद रखें बात, अपनी गलती को देखो, अपनी गलती को देखो, एक दफा रद्द कर दिएगा ना अल्लाह की किसी मजलिस से, ये बता रहा हूं आपको क्यामत तक आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं भी, किसी अल्लाह वाले की मजलिस से कभी अल्लाह ना धुतकारे, सबसे बड़ी सजा है ये, सबसे बड़ी सजा किसी अल्लाह वाले की मजलिस से निकाल दिया जाए, याद रखना नफ्स निकालता है, शैतान धक्के दिलवाता है, नखरे पैदा करता है, बिल्कुल नहीं चलता हूं ये, मैं आपको जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूं, सबसे बदकिस्मत इंसान वो होता है जो किसी अल्लाह वाले की मजलिस से धतकार दिया जाए, निकाल दिया जाए, दूर कर दिया जाए, एक जाहिर खुशहाली आपको नजर आ जाएगी उसकी, लेकिन उसको दीन और दुनिया बर्बाद हो जाता है, नफ्स और शैतान उसको जकड़ लेता है, उस शख्स को जकड़ लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं तेरी इसलाह चाहता हूं, तुझे नेक बनाना चाहता हूं, और तू नखरे जा फिर ऐश कर दुनिया के अंदर, ऐश करता है खूब दूंगा तुझे दुनिया तेज चमका दूंगा, तुझे एहसास भी नहीं होने दूंगा कि तू गलत था या गलत थी, ऐसी जगह पर तुझे डाल दिया जाएगा, तो ऐसी मजालिस में कभी अगर ऊंचा नीचे हो जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के जख्म को सीने से लगाए, सुभानअल्लाह सही है मामला बन रहा है, अब मुझे खत्म करनी चाहिए ये चीज, अब मुझे इंसान बन जाना चाहिए, मुझे मुंह फुलाने के गुस्सा करने के नखरे करने के नहीं, सब झुक जाओ, अल्लाह ताला करम है तेरा कि तूने आज मेरी आंख खोल दी, मेरे में ये सारी गलतियां थी और मैं समझ गया हूं, आज के बाद मैं इसकी तौबा करता हूं, अपनी जिंदगी को सही करता हूं, देखो अल्लाह की रहमतें कैसे आती हैं, फिर तजर्बा करके देख रहे हो ऐसी रहमतें बरसेंगी, और असल मजलिस वही है जिसमें जख्म में जरा नमक मिर्च लगे, वो असल मजलिस होती है, समझ जाए मिर्चें लग रही हो ना, भाई बातें समझ आ रही हैं दिल पे, ये ना उसके लिए समझे हाँ मेरे लिए है, सही टिक रही है तो समझो ये हकी मसला है, और जहां चढ़ाया जा रहा हूं वहां ये क्या बात है माशाल्लाह आप तो बड़े वो ही वहां समझो काम खत्म हो गया, ये भी समझना बात, बहर अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम नेक और सच्चे इंसान बन जाए और आखिरत की हम फिक्र करें।